पांचवा, चंपा में भारतीय संस्कृति के मूर्त अवशेष। कंबुज देश के अंकोरवाद एवं जावा के बरोबदूर मंदिरों के समान किसी विशाल मंदिर या विहार के अवशेष चंपा में उपलब्ध नहीं हुए हैं। चंपा में मंदिरों के निर्माण के लिए प्रायः ईंटों का उपयोग किया जाता था, यही कारण है कि वे देर तक कायम नहीं रह सके। वे प्रायः नष्ट हो गए हैं और उनमें जो बहुत अधिक मजबूत थे वे भी अब जीर्ण तथा भग्न दशा में हैं। पर चंपा के मंदिरों के इन भग्नावशेषों को देखकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस देश में भी भवन निर्माण तथा स्थापत्य के शिल्प अच्छी उन्नत दशा में थे। चंपा में प्राचीन मंदिरों के अवशेष मुख्यतया तीन स्थानों पर विद्यमान हैं, माइसोन, पोनगर और दोंग दुओंग। इन तीनों स्थानों के मंदिरों का संक्षिप्त रूप से परिचय देना उपयोगी है। माइसोन चंपा राज्य के उत्तरी क्षेत्र में तुरेन के दक्षिण पूर्व में 21 मील की दूरी पर एक घाटी है जो पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह घाटी प्रायः वृत्ताकार है और एक पहाड़ी के सामने की और दूसरी पहाड़ी के बीच की दूरी प्रायः 1 मील के लगभग है। इस घाटी में प्रवेश का केवल एक मार्ग है जो एक छोटी सी नदी के साथ साथ जाता है। माइसोन की घाटी में विद्यमान मंदिरों की संख्या 30 से भी अधिक है और प्रत्येक मंदिर के साथ संबंध अन्य भी कई इमारतें हैं। मंदिरों का निर्माण ऊंचे धरातलों पर किया गया है जो ऊंचाई में प्रायः 6.5 फीट के लगभग है। इनके ऊपर बने मंदिर तक के पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। माइसोन के मंदिर मुख्यतया शैव संप्रदाय के हैं और उनमें शिव के साथ साथ गणेश, उमा तथा स्कंद की भी मूर्तियां हैं। कतिपय मंदिरों में पौराणिक हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की भी सत्ता है। दोंग दुओंग माइसोन के दक्षिण पूर्व में 12 मील की दूरी पर दोंग दुओंग की स्थिति है। इस स्थान के मंदिर जिस क्षेत्र में विद्यमान है वह लंबाई में 328 गज और चौड़ाई में 164 गज है। इस सारे क्षेत्र के चारों ओर ईंटों की एक दीवार बनी है जिसमें प्रवेश करने का केवल एक द्वार है जो पूर्व की ओर बना है। 328 गज लंबा और 164 गज चौड़ा यह आयताकार क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग की लंबाई 328 गज है पर चौड़ाई में वे तीनों भाग एक बराबर नहीं है। इनमें से जो बीच का भाग है उसके पश्चिमी खंड में दोंग दुओंग का प्रधान मंदिर विद्यमान है जिसके चारों ओर अन्य चार मंदिर हैं। ये पांचों मंदिर एक ही ऊंचे धरातल पर बने हैं। इस मंदिर समूह के सामने एक अन्य विशाल इमारत है जिसके साथ दो अन्य मंदिर तथा दो ऐसी इमारतें हैं जिनका उपयोग निवास के लिए किया जाता था। इन सब मंदिरों एवं इमारतों के चारों ओर भी एक दीवार बनी हुई है। इस दीवार के कारण जो बहुत बड़ा सा आंगन बन गया है उसमें 7 छोटे मंदिर भी दीवार के साथ बनाए गए हैं। 328 गज लंबे तथा 164 गज चौड़े क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग के अतिरिक्त जो अन्य दो भाग हैं उनमें भी इसी प्रकार के दीवार से घिरे आंगन हैं जिनमें विविध प्रकार के भवन बने हुए हैं। दोंग दुओंग के इसी क्षेत्र से जय इंद्र वर्मा का वह अभिलेख उपलब्ध हुआ है जिसमें उस राजा द्वारा लक्ष्मेंद्र लोकेश्वर की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए एक विहार के निर्माण का उल्लेख है। संभवतः दोंग दुओंग के बौद्ध मंदिरों तथा अन्य इमारतों के निर्माण का सूत्रपात राजा जय इंद्र वर्मा द्वारा ही 9वीं सदी में किया गया था। बाद में अन्य राजाओं व संभ्रांत पुरुषों ने भी वहां मंदिरों आदि का निर्माण कराया था। इस स्थान के भग्नावशेषों में बौद्ध धर्म से संबंध बहुत सी मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं। पो नगर चंपा देश के दक्षिणी क्षेत्र में खन्नह हुआ का प्रदेश है जिसके नहयंग नामक स्थान के समीप पो नगर के मंदिरों के भग्नावशेषों की सत्ता है। ये मंदिर संख्या में 6 हैं और एक पहाड़ी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर 2 पंक्तियों में स्थित हैं। सामने की पंक्ति में प्रधान मंदिर है जो वर्तमान समय में भी अच्छी दशा में है। प्रधान मंदिर उत्तर की ओर है और उसके दक्षिण में 2 अन्य मंदिर हैं। पिछली पंक्ति में भी 3 मंदिर बने हैं। इन 6 मंदिरों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक इमारतों के भग्नावशेष पो नगर की पहाड़ी पर मंदिरों के समीपवर्ती स्थान पर विद्यमान है। इन सब मंदिरों का संबंध पौराणिक हिंदू धर्म से है और इनमें शिव तथा उनसे संबंध देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। पो नगर के ही मंदिर थे जिन्हें जावा यवद्वीप के जलमार्ग द्वारा आए हुए सैनिक संघों ने 8वीं सदी में विनष्ट कर दिया और बाद में जिन्हें राजा सत्यवर्मा द्वारा पुनः बनवाया गया था। अन्य मंदिर माइसून, दोंग दुओंग और पोनगर के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से स्थानों पर प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान है। फन रंग के उत्तर में नहोन सोन गांव के समीप अनेक मंदिर खंडहर के रूप में पड़े हैं जिनके खंभों तथा मेहराबों में सुंदर नक्काशी की गई है। इन्हें लताओं और पत्र पुष्पों द्वारा अलंकृत किया गया है। फनरी नगरी के समीप एक पहाड़ी पर 6 मंदिर विद्यमान हैं जो पो दम के मंदिर कहलाते हैं। इनमें मुख्य मंदिर बहुत अलंकृत हैं और एक छोटे मंदिर की छत का उपरला भाग गोलाई लिए हुए है। थियेन छन गांव के समीप पहाड़ी के ऊपर 3 मंदिर हैं जिनके द्वार पूर्व की ओर हैं। इनमें जो मुख्य मंदिर है उसकी छत के किनारों पर भुर्ज नहीं बने हैं। चंपा के मंदिरों में प्रायः छत के किनारों पर भुर्ज बने रहते हैं। इनकी श्रृंखला छत की उपरली मंजिलों पर भी चलती जाती है, पर थियेन छन के समीप स्थित इस मंदिर में ऐसा नहीं है। फन रंग के समीप पो कलोंगराई के मंदिर हैं जो पर्याप्त रूप से अच्छी दशा में हैं। इनका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था। दुओंग लोंग नामक स्थान पर भी प्राचीन मंदिरों के कुछ भग्नावशेष विद्यमान हैं जिनके स्तंभों आदि पर विविध प्रकार के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। चंपा के मंदिर भवन निर्माण कला की दृष्टि से चंपा के मंदिरों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण इन्हें कंबुज के मंदिरों से भिन्न प्रकार का कहा जा सकता है। चंपा के सब मंदिर एक जैसे नहीं हैं, उनमें बहुत सी भिन्नताएं हैं, पर भिन्नताओं के होते हुए भी उनमें कतिपय तत्व एक सदृश है। उनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया है, यद्यपि द्वारों, लिंटल तथा कार्निस के लिए प्रस्तर भी प्रयुक्त हुए हैं। मंदिर ऊंचे धरातल पर बनाए गए हैं। प्रायः सभी मंदिर वर्गाकार हैं और उनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई की तुलना में अधिक है। मंदिरों के गर्भगृह में केवल एक द्वार है जो प्रायः पूर्व की ओर है। शेष 3 दीवारों पर आलों के रूप में नकली द्वार बनाए गए हैं। इन आलों में पूजा के लिए दीप रखे जाते थे और मूर्ति को गर्भगृह के मध्य भाग में प्रतिष्ठापित किया गया था। गर्भगृह के द्वार के सामने एक छत्ता हुआ ओसरा रहता है जिसके आगे भी एक बड़ा द्वार होता है। इस द्वार के दोनों ओर कलात्मक एवं अलंकृत प्रस्तर स्तंभ रहते हैं। इसी प्रकार द्वार के ऊपर के लिंटल के प्रस्तर पर भी सुंदर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। गर्भगृह और उसके सामने के ओसार जिस धरातल पर बने होते हैं वह चारों ओर की भूमि से 6 फीट के लगभग ऊंचा होता है, अतः उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं जो ओसारे के बाह्य द्वार तक पहुंचती हैं। मंदिर की छत पिरामिड के सदृश बनी है जो नीचे से ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। पिरामिड की आकृति की इस छत में प्रायः 3 मंजिलें रहती हैं। प्रत्येक मंजिल के चारों कोनों पर 4 भुर्ज बने रहते हैं जो स्वयं मंदिर की आकृति के होते हैं। ऊपर की मंजिल निचली मंजिल की तुलना में छोटी होती जाती है। सबसे ऊपर एक शिखर रहता है जिसका निचला भाग कमल के सदृश और उपरला भाग आग की लौ जैसा बनाया जाता है। मंदिर के बहिरंग को अलंकृत करने के लिए पंख फैलाए हुए हंसों, मकरों और अप्सराओं आदि की प्रतिमाओं को पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। ईंटों द्वारा निर्मित इन मंदिरों में जो प्रस्तर खंड प्रयुक्त हुए हैं वे प्रायः सभी लताओं, पत्र पुष्पों और विविध प्रकार के अन्य दृश्यों से विभूषित हैं। मूर्तियां चंपा के भग्नावशेषों में बहुत सी प्राचीन मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं जिनसे इस देश के मूर्ति निर्माण कला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। शिव की 2 मानवाकार खड़ी मूर्तियां माइसोन से मिली हैं जो प्रायः एक जैसी हैं। इनमें शरीर के विविध अंग भली भांति संतुलित हैं और मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव अभिलक्षित है। शिव की एक मूर्ति नृत्य मुद्रा में उपलब्ध हुई है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ टूट गया है। बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके कानों में कुंडल है, बाहों में बाजू बंद है, हाथों में कंगन है, वक्ष स्थल पर माला है और पैरों में नुपुर है। उन्होंने सिर पर ऊंचा मुकुट धारण किया हुआ है जो मालाओं से अलंकृत है। भिन्न दिन से प्राप्त एक मूर्ति ध्यानावस्था में बैठे हुए शिव की है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है जो खुला हुआ है। कुंडल, कंगन आदि आभूषणों के अतिरिक्त शिव ने सर्प भी धारण किया हुआ है। शिव के मुखमंडल पर मंद स्मित है और उनकी आंखें ध्यान में अर्धोन्मीलित हैं। सिर पर जटाओं और मुकुट के साथ चंद्रमा भी अंकित है। माइसोन के एक मंदिर के बाह्य भाग के एक शिलाखंड पर शेषशायी विष्णु की मूर्ति बनाई गई है। शेषनाग को सैया बनाकर विष्णु लेटे हैं। उनकी नाभि से कमल निकल रहा है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। मूर्ति के दोनों सिरों पर दो गरुड़ बनाए गए हैं जिन्होंने अपने दोनों हाथों में सांप पकड़े हुए हैं। इन गरुड़ों का ऊपर का भाग मनुष्य के आकार का है और नीचे का पक्षी के आकार का। चंपा से प्राप्त विष्णु मूर्तियों में एक ऐसी भी है जिसमें विष्णु को खड़े हुए बनाया गया है। चतुर्भुज विष्णु के दाई ओर के दो हाथों में से एक ऊपर की ओर उठा हुआ है और दूसरा आगे की ओर छाती पर था जो अब टूट गया है। बाएं हाथ टूटे हुए हैं। सिर पर मुकुट है जिसका उपरला भाग आमलक की तरह का है। मुखमंडल पर गंभीरता है। भौहों कमानीदार हैं और परस्पर मिली हुई हैं। ओठों पर पतली सी मूछें भी बनाई गई हैं। शरीर के अधो भाग पर जो वस्त्र है वह धोती के सदृश है और कमर पर वह एक चौड़ी पेटी से बंधा हुआ है। विष्णु की यह मूर्ति इस समय तुरेन के संग्रहालय में है। चंपा के भग्नावशेषों में पौराणिक देवी देवताओं की अन्य भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं जो प्रायः भग्न दशा में हैं। चंपा में बुद्ध तथा बोधिसत्वों आदि की भी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, पर पौराणिक देवी देवताओं के समान वे अधिक संख्या में नहीं है। दोंग दुओंग से प्राप्त एक मूर्ति ध्यानावस्था में बैठे हुए बुद्ध की है, पर बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए न होकर पैर लटकाकर बैठे हुए हैं और उनके दोनों हाथ घुटने पर हैं। सिर के बाल घुंघराले हैं जैसा कि प्रायः भारत की बुद्ध मूर्तियों में होते हैं, पर इस मूर्ति में वह सौंदर्य एवं कलात्मकता नहीं है जो भारत की बुद्ध मूर्तियों में पाई जाती है। चंपा से प्राप्त नर्तकी की एक मूर्ति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। माइसोन के एक मंदिर के स्तंभ पर एक चित्र उत्कीर्ण है जिसमें तीन नर्तक नृत्य करते हुए अंकित किए गए हैं। बीच के नर्तक का शरीर बहुत लचकीला है और उसने अपने हाथों और पैरों को नृत्य की मुद्रा में फैलाया हुआ है। अन्य दो नर्तक भी नृत्य मुद्रा में हैं। अन्यत्र प्राप्त एक प्रस्तर फलक पर तीन नर्तकियों को नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। माइसोन के एक मंदिर में जहां शिव का तांडव नृत्य अंकित है, ऐसे दृश्य भी उत्कीर्ण है जिसमें नृत्य और वादन प्रदर्शित किए गए हैं। एक दृश्य में एक व्यक्ति वीणा बजा रहा है, दूसरे के सामने दो तबले रखे हैं और साथ में नृत्य हो रहा है। इसी प्रकार के नृत्य और संगीत के अन्य भी दृश्य चंपा के प्राचीन मंदिरों के बाह्य भागों पर अंकित है। मंदिरों के द्वारों, लिंटलों तथा कर्णिस आदि को चित्रित करने के लिए वहां पुष्प, पत्र, लता, पशु, पक्षी, नाग, गांधर्व, अप्सरा, हाथी, सिंह, मकर, गरुड़ आदि की आकृतियों का आश्रय लिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि चंपा में भी भवन निर्माण कला, मूर्ति कला और चित्रकला अच्छी उन्नत दशा में है। चंपा के मंदिरों पर जो अनेक मंजिलों वाली ऐसी छतें बनाने की प्रथा थी जो नीचे की तुलना में ऊपर की ओर लगातार छोटी होती जाती हैं, वह संभवतः भारत की द्रविड़ शैली से ली गई है। सातवीं सदी में निर्मित मामल्लपुरम के रथ मंदिरों और कांजीवरम तथा बदामी के मंदिरों की छतें भी प्रायः इसी ढंग की हैं। मामल्लपुरम के धर्मराज रथ अर्जुन और रथ मंदिरों की छतों की यदि चंबा के बहुरथ संख्यक मंदिरों की छतों से तुलना की जाए तो उनमें सादृश्य दिखाई देगा। धर्मराज शिव का मंदिर है जिसे अत्यंत कामल पल्लेश्वेश्वर भी कहते हैं। चंपा के शंभु भद्रेश्वर सदृश कितने ही मंदिरों के नाम भी इसी ढंग के हैं। पल्लव राजाओं द्वारा अपने नाम पर स्वनिर्मित मंदिरों के नाम रखने की प्रथा का चंपा में भी अनुकरण किया गया है। भारत के जो उपनिवेशक चंपा में जाकर बसे थे वे भारत की भाषा शासन व्यवस्था और धर्म के समान भारत की कला को भी अपने नए देश में ले गए थे। अतः यदि भारतीय भवन निर्माण कला तथा मूर्ति कला का चंपा की कला पर प्रभाव दिखाई पड़े तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।